और उस रीति का कर्म हो जाए तो परमात्मा भी प्राप्त। दोनों रीतियों के जो कर्म होते हैं पाप उसको मिले उसके मिले ठीक है। अब क्या करना चाहिए, भाई ने पाप कर दिया चोरी की या व्यभिचार किया, पाप कर्म क्या है, ये भूत कपट चोरी व्यभिचार मद्यपान मांस भक्षण चूड़ा छोड़ना हिंसा करना और जितने जो पाप हैं वे तो जो पाप कर्म नीचे कर्म है क्या तो निश्चित कर्म है। अच्छे कर्म क्या है कि जैसे जल करना तप करना ब्रह्मचर्य का पालन करना दान देना दूसरों का हित करना पूजा करना सत्कार करना आदर करना अच्छा व्यवहार करना इस प्रकार से बहुत से जितने जो सात कर्म है तीर्थ है व्रत है उपवास है सबका विस्तार है या भगवान का जो भजन ध्यान करना भक्ति करना ये भी उत्तम कर्म होते हैं। तो ये सात कर्म है उत्तम कर्म है इसका उत्तम फल है को प्राप्त होना परमात्मा को प्राप्त होना सबसे बड़े परमात्मा को प्राप्त होना तो यहाँ उसका फल भोग लेना सैतम भाव से जो कई आदमी कर्म करते उत्तम कर्म तो यहाँ उसका फल मिल जाता है और अन्य यही में जाकर के लिए मिलता है। इस प्रकार से अपने जिस उद्देश्य से जिस भाव से कर्म करता है उसके अनुसार ही उनकी गति होती है। तो कर्म जो करता है उसके दो रूप होते हैं, एक तो वृत्ति रूप है और एक फल देने के जो उनके दो रूप होते हैं। फल क्या होता है कि जाति आयु भोगा ये योग शास्त्र में बता रहा है उसके होते हैं जाति आयु और भोग योग दर्शन पाताल योग दर्शन जाति मैंने योनि पशु पति खीर पसंद जाति आयु मैंने इतने वर्ष को संसार में जीकर रहेगा और भोग मैंने सुख दुख पाप का फल है तो दुख और पुण्य का फल है तो सुख सब ये नियम रहता है। उनमें प्रधानता है एक सुख प्रधान योनिया एक दुख प्रधान पशु पक्षी खीर पसंद आज ये दुख प्रधान योनिया है और इतनी जो ये सुख प्रधान योजना और मनुष्य के बीच में सुख और दुख दोनों मिले हुए। अब ये विचार करना है तो किस प्रकार से कि ये जीवात्मा इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाता है सभी बात सच्ची कहते हैं। प्रकार से है कि जो मनुष्य कर्म करता है जैसे चोरी करता है पाप कर्म चोरी करता है तो चोरी का फल है दंड या तो इसी रोग के मां उसको चोरी का दंड उसे मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि मरकर करते तो दुख योनियों के मां भी उसको दंड मिलता है यहां जो पूरा दंड मिल जाता है चोरी का तो फिर परलोक में उसको दंड नहीं मिलता। ये बात है महाभारत के माती है संघ और लिखित में दो भाई थे तो लिखित छोटा भाई था संघ बड़ा भाई था तो लिखित ने अपने चोरी कर ली अपने भाई के बगीचे में तो भाई ने कहा कि तुम सभी राजा राजकर्ता के पास जाकर तुम दंड ले लो तो बस फिर तुम्हारे को यमराज के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा तो नहीं तो परलोक में दंड मिलेगा। तो राजा सभी के पास ले जाकर तो उसने सारी बात कह दी राजा ने दंड दिया कि उसके हाथ काट डाले और उसके भाई ने दया करके कहा कि तुम पिताजी का तर्पण करो उसने जाकर के बहु कर तर्पण किया उसके हाथ वापिस आ गए। मेरे भाई से कहा कि आपने इतनी शक्ति है तो मुझको आप दंड क्यों नहीं दे दिया, बोले नहीं दंड देना राजा का काम है दया करना ब्राह्मण का काम तो मैं अपने तप के बल से तुम्हारे हाथ वापिस दे दिए और दंड देना मेरा काम नहीं। तो वहाँ ये बात बतलाई है कि जिसको नियंत्रण नहीं मिलता चोरी का उसको परलोक में मिलता है। फिर याद करना चाहिए उस बात को पहली बात तो फिर ख्याल करना चाहिए। तो एक तो जैसे चोरी कर्म है, तो चोरी के जो दो भेद हुए, एक दंड उसको मिलना और एक चोरी की आदत पड़नी। चोर लोग चोरी करते हैं, उनको दिन मिलता रहता है, फिर वो चोरी की आदत किसने रहती है, वो है वृत्ति रूप संस्कार। एक वृत्ति रूप संस्कार और एक फल भोग रूप संस्कार, दो प्रकार के संस्कार पड़ते हैं। तो वृत्ति रूप जो संस्कार है वो कायम रहते हैं। जैसे एक आदमी व्यवचार करता है और व्यवचार का दंड मिल जाता है, उसके कोई बीमारी होकर के मिल जाता है, समझे कि गर्मी की बीमारी, जात की बीमारी, कोई प्रकार की बीमारी होकर या राजा उसको दंड दे देता है कि तुमने ऐसे परस्पर नहीं किया। यदि यहाँ उसको दंड नहीं मिलता है तो फिर परलोक में पूजा का दंड मिलता है, दंड उसे जरूर मिलता है। तो ये तो उसके कर्म के फल की बात हुई। और मृत्यु रूप संस्कार जो होते हैं, जैसे व्यवचार करने की आदत पड़ गई तो वो असली को देखने से उसकी वृत्तियां जागृत हो जाती है और फिर वो व्यवचार करता है, तो उसके हृदय में संस्कार कायम रहते हैं। जैसे चोरी करने वाले चोर के चोरी के संस्कार और व्यवचार करने वाले के व्यवचार के संस्कार, ये पाप कर्म के संस्कार उसके हृदय में तो रहते हैं। ये वृत्ति रूप संस्कार है, इसका नाम गुण रूप संस्कार है। तो जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसी वृत्ति बनती है, वैसे उसके हृदय में गुणों की स्थापना होती है। और जैसे संस्कार होते हैं गुणों के, उसी के अनुसार मरने के समय में समृद्धि होती है। ये महर्षि पतंजलि जी ने पाता में दिए प्रसंग में बताया कि समृद्धि संस्कार एक रूपत्वात्, समृद्धि संस्कार ये एक रूपत्वात्, समृद्धि और संस्कार का एक ही रूप होता है। जैसे हृदय में संस्कार होते हैं वैसे समृद्धि यानी स्वर्णा होती है, और स्वर्णा के अनुसार फिर नए कर्म बनते हैं। समय के जितने हमारे से जो कर्म बने हैं, हमारे भीतर के जो संस्कार जुड़े हुए हैं हमारे कर्मों के समूह में, उसके मन जिस प्रकार के थी तुम जो पूर्ण होती है, उसी प्रकार से फिर हम कर्म करने लग जाते हैं। और जैसे इस प्रकार से संयोग होता है, संयोग के अनुसार उसमें संस्कारों की जागृति हो जाती है। जैसे हमने समझो की परस्त्री गमन किया और उसमें उसकी वस्त्र के भी देखेंगे, तो देखने के साथ ही वो हमारे भीतर में जो भोग के जो संस्कार जमे हुए हैं वो जागृत हो जाएंगे कि सत्री के साथ में मैंने ऐसा व्यवचार किया या भोग किया, वो सुख की समृद्धि हो जाती है और उसे कुछ कर्म की समृद्धि हो जाती है, फिर कुछ कर्म करता है तो वे संस्कार उसके मन नए कर्म कराने के मामले संस्कार शामिल होते हैं। मरने के समय में वे संस्कार काम में आते हैं कि जिस व्यक्ति का मन इसके प्राण जाते हैं, उस प्राण जाने के समय के जिसके मां भावी यही जो मिलने वाली है उसी के संस्कारों की जागृति हो जाती है। कि जैसे एक आदमी ने ऐसा काम किया कि वो चोरी करता रहा, तो मरने के समय में उसमें बक वृत्ति या बिगाड़ वृत्ति हो जाती है। बक माने बदला का नाम है, बिगाड़ माने बिल्ली का। तो वो जिस प्रकार से एक प्रकार से दंड पाकर करता है, तो मरने के समय उसको बदला याद आ जाता है। और जैसे कोई एक प्रकार से चोरी करता है, लोगों की नजर छिपा करके बिल्ली की माँ पर बिगाड़ की माँ पर चोरी करता है, तो मरने के बाद उसको बिगाड़ याद आ जाता है। तो कर्मों के अनुसार संस्कार गई और संस्कारों के अनुसार अंतकाल के मां समृद्धि हुई और समृद्धि के अनुसार भावी जन्म होता है। और भावी जन्म किस प्रकार से होता है कि ये इसका सूक्ष्म शरीर है, इसके भीतर में एक सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर में एक कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर तो यह है कि जो आप लोग वर्तमान में देख रहे हो, सूक्ष्म शरीर वह है रात्रि के सपने के बीच में जो सपने जिस संस्कार उनके वहाँ आपने सैर करता है, सपने संस्कार में भ्रमण करता है, जो तो हमारा शरीर यहाँ इस जगह में जगह पर या खटिया पर सोया हुआ है और सपने में समझो हमारा मानसिक शरीर सब काम करता है, तो वो मानसिक शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है। और मर करके जाता है तो सूक्ष्म शरीर से ये जाता है, सूक्ष्म शरीर में यहाँ ही रह जाता है, सूक्ष्म शरीर निकल करके यहाँ से विदा होता है। तो ये सूर्य भी हमारा मनुष्य है, सूक्ष्म भी मनुष्य है और कारण भी हमारा वर्तमान में मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य की योनि में है। रात्रि में हमारे को सपना आ जाए तो मनुष्य ही हम अपने को देखेंगे, कभी पशु पक्षी नहीं देखेंगे। कोई भी आदमी को ऐसा सपना नहीं आ रहा कि सपने में भी अपने को पशु के रूप में देखे या पक्षी के रूप में देखे। और कारण शरीर जो है वो
एक प्रकार से हमारा सुसुप्ति अवस्था में है, इस सुसुप्ति अवस्था के कार्य स्वरूप में हम विलीन होते हैं। फिर उठ करके देखते हैं तो अपने को भविष्य देखते हैं, उसमें हमारे को कोई ज्ञान नहीं रहता, कार्य स्थिति में ज्ञान नहीं रहता, वहाँ मन बुद्धि विलीन हो जाते हैं, इस तरह से ज्ञान नहीं रहता। तो ये तीन अवस्था आपको लग रहा है। अभी ये बताया जाता है कि मरने के बाद किस प्रकार से जाता है, तो मरने के समय में जिस प्रकार से हम जन्म भर में कर्म करते हैं, उस कर्मों का जो समूह है, उस समूह के अनुसार उसमें जो प्रधान चीज है, जिसमें हमने विशेष अभ्यास किया है, उसी के संस्कार की जागृति हो जाती है। जिन्हें हमको देवता बनना है तो देवता की जागृति हो जाती है, और जिस समय के रिश्ते में जिसको जो बनना है, पशु पक्षी चीर पतंग आदि, उसी शेष कारों की जागृति, उसी के अनुसार जो है वो जीना होता है। अब ये ख्याल करना चाहिए कि संस्कार में तो सारी जागृति हो जाती है, कि नए संस्कार भी बन सकते हैं, यदि नहीं बनते हैं तो मरने वाले को गीता की सुनाई जाती है, भगवान का नाम की सुनाया जाता है, ठीक है। ये दोनों ही बात है, जैसे रिजन रतन की सत्ता था, मध्य कृष्ण की राज था, ये जो गीता की शोध में जाके सारा के श्लोक में बताया गया है, ये तो वो स्थिति है कि जो बहुत गति है, और इसके पहला और दो प्रकार की गति बतला दी है, दो श्लोकों की हमारी सब प्रकार की गति बतला दी है कि है तो वो दान की अंत में के माँ सात्विक वृत्ति होगी, तो उसकी प्रथम सात्विक की गति होगी, है तो सात्विक अंत समय के माँ ताम की वृत्ति होगी, तो उसको ताम की गति पहले होगी। जैसे हमारे शास्त्रों में आता है भरत मुनि जो है, ये भरत मुनि बड़ा अच्छा पुरुष था, बहुत सात्विक पुरुष था, किन्तु मरने के समय उसको मृग की स्मृति होगी, मृग के संग से मृग को पालन करने से, तो प्रथम मृगीय से बना, तो अंतकाल के बीच के वहाँ नई स्मृति भी हो जाती है। इसी प्रकार से कोई पापी आदमी है, अजाने उसको बड़ा भारी पापी था, पर मरने के समय उसको नारायण का नाम याद आ गया, उसी वक्त के बीच में भगवान के रूप उसको लेने के लिए आए, उस वक्त वो मरा नहीं, फिर भगवान के रूपों से उपदेश लेकर के हरिद्वार में जाकर के भगवान की भक्ति करी, तपस्या करी, उसके बाद में उसकी मृत्यु हुई। तो ये ख्याल करना चाहिए कि मरने के समय के बीच के माँ वो बदल नहीं सकता है, तो किस प्रकार से ये समझती होती है कि जैसा कर्म होता है उनके अनुसार ही गुणों की वृत्ति संस्कार रूप से अपने ग्रंथ और गुणों के अनुसार ही मरने के समय में, संस्कार के अनुसार ही मरने के समय में समृद्धि होती है, और समृद्धि के अनुसार ही भाई बहन होता है। तो प्रथम उसका ये स्थूल शरीर जो है, इसमें से कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर, कारण शरीर वो कि जो संस्कार रूप से हमारे हृदय में जो इकट्ठे हुए हैं, वो है कारण शरीर, मैंने भाई जन्म का कारण है, इस बात से वो कारण एक प्रकार से शरीर है, वो एक प्रकार संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं, भाई में जो मिलने वाला शरीर है उसके लिए संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं, तो मरने के वर्ष में उसकी स्मृति हो जाती है, वह सूक्ष्म शरीर हो गया, और सूक्ष्म के अनुसार से राजा जाकर के स्थूल होगा। इस प्रकार से कि जैसे कैमरा है, और कैमरे के आईने के सम्मुख जैसा दृश्य होता है, तो उसी दृश्य को पकड़ लेता है, कहता है 1 2 3 वो बड़ा तुम्हारा जो फोटो उतर गया, तो जिस समय में हम जिस रूप में होते हैं वैसे हमारा फोटो उतर जाता है। एक भाई अपना फोटो उतरा रहा था, और उसके सुंदर की अपने नाक पर माछी बैठ गई, माछी, तो उसने फिर इस प्रकार से हाथ से उसको उड़ाया, तो फोटो उतारने के समय के बीच के वहां 3 बजे वक्त उसका हाथ ऐसा, तो उसका हाथ भी उसके मुख के ऊपर आप नहीं कर गया, तो उसने तारे बोला फोटो बना तुमने मेरा फोटो खराब कर दिया, बोला हमने नहीं खराब किया, तुमने खराब किया, मरने फोटो उतारने के समय में तुमने अपना हाथ यहाँ लाया, तभी तो यहाँ उतरा ना, तो उसने याद आया कि यहाँ मच्छी मैंने उड़ाई थी, तो बोला मेरा फोटो बिगड़ गया, अब फिर फोटो को दूसरा उतार के गया, बोले फिर खर्चा लगेगा, तो फिर हम उसको 10 रुपया 20 रुपया देंगे, तो हमारा दूसरा नया फोटो और बुढ़िया फिर फोटो लेकर के फोटो उतार देगा, किंतु ये मरने के समय हमारा ये फोटो बिगड़ जाएगा, तो 1 लाख रुपया खर्च कर देगा, फिर फोटो बिगड़ेगा नहीं, तो हमको मरने के समय में खूब सावधान होना चाहिए। तो यहाँ कैमरा क्या है कि हमारा जो शुद्ध जो अंतःकरण है वो कैमरा है, और उस रूप में हमारी जो समृद्धि है, मन का जो संकल्प है, वो फोटो के रूप में उतरेगा, और फिर फोटो के रूप में उतर करके, और निकलेगी। तो ये ख्याल करना चाहिए खूब ध्यान दे करके कि इस समय में हमारा मनुष्य का शरीर है और हम पाप से भागने में कुत्ते के शरीर में जाने वाले हैं, तो क्या होगा कि एक मरने के समय में हमको कुत्ता याद आ जाएगा। तो कुत्ता याद आने से ही हमारे मन के भीतर के बीच में हमारा जो मन रूपी जो आईना है अंतकरण रूपी उस आईने के न उसका संकल्प के रूप में कुत्ता है तो आपने बन जाएगा विकल्प का कुत्ता। और संकल्प में कुत्ता बढ़ते के हमारे प्राण निकले तो प्राणों के मन मन है और प्राणों के अंदर हमारी इंद्रियां है और प्राण जो है पांच प्राण इंद्रियां और मन और बुद्धि ये सत्रह पदार्थों का सूक्ष्म शरीर होता है। पांच प्राण दस इंद्रियां मन बुद्धि ये सत्रह का समूह इसमें निकल जाता है और प्राण इसमें प्रधान है। प्राण इसका उस वक्त में शरीर है जो है प्राण वायु मन हवा हवा निकल जाती है। ऐसा जो प्राण निकल कर अब शरीर में जाना है तो खाद्य पदार्थ है उसे ये समस्ती जो वायु है उनचास भेद है ये वायु देवता भगवान के सब देवता दूत है। ये वायु देवता अपने अपने अधिकार के अनुसार उसको कुत्ते की श्वास के द्वारा या अन्न के द्वारा या जड़ के द्वारा वो पेट में जाते थे फिर वीर्य के रूप में वो बनता है और फिर पृथ्वी के योनि के मस्तक में बनता है और पृथ्वी का रज उसका वीर्य दोनों मिलकर के उस संकल्प में फंस जाते हैं जो मानसिक संख्या जो मानसिक क्रिय फिर उसका स्थूल शरीर बनता है फिर बार के यहाँ आता है। किसी योनि होती है किसी योनि में दो महीना रहना पड़ता है किसी में छह महीना मनुष्य जैसे नौ महीना दस महीना गाय को दस महीना इस प्रकार की वृद्धि होनी होती है उसी के अनुसार वो वृद्धि को प्राप्त होकर के फिर उस रूप में आता है। संचार जैसा होता है तो उसके मां पितर धाती हो जाता है तो पितर की मूर्ति उसी के अनुसार ढल जाती है। जैसा संचार होता है तो हमारा जो मन है और मन के भीतर में जो संकल्प है वो संकल्प जो संचार है उसके मां से थोड़ा रज वीर शामिल होकर के और वो उसके अनुसार ढल जाता है। जैसा तिरंगा चित्र होता है फोटो लेने वाला उसका फोटो ले लिया तिरंगा तुम बढ़ा करके लाओ तो उसके माँ पहला वो फिर रंग के माँ छापता है उसके बाद में लाल के माँ फिर ऐसे ब्लू रंग के माँ तो सब प्रकार के रंग खुल जाते हैं। आकृति तो उसके माँ पहले तो रहती है तो आकृति और संग्रह है रंग जो जैसे तीन प्रकार का रंग से सब रंग खुलते हैं प्रकार का रंग है ये मनुष्य के पशुओं के उत्पन्न होने एक तो रज और एक वीर्य रज और वीर्य दोनों से सब प्रकार के रंग उसमें खिल जाते हैं आकृति में वे ढल जाते हैं आते हैं। जीवात्मा जो है मनुष्य वो पशु की योनि में जा रहा है पक्षी की योनि में जा रहा है तो ऐसा नहीं कि वो उसके में योनि तैयार होने के बाद जीव उसमें प्रवेश है फिर प्रवेश होने का कोई रिश्ता नहीं है वो तो पहले से ही प्रवेश होता है पहले उनके पुरुष में प्रवेश होता है पुरुष के द्वारा स्त्री में सिंचा जाता है तो स्त्री और पुरुषों का दोनों का समुद्र होते उसे उनकी आकृति में ढल जाता है जैसा उसके मन का संकल्प होता है और आकृति में ढलते उसके प्रेम के रूप में आता है। ये यहाँ की यहाँ जो बुद्धि होती है उसकी बात आपको बताई तो मनुष्य के विषय में यही है पशु पक्षी के विषय में यही है इस प्रकार के इस लोक में जो उनका परिवर्तन होता है और परलोक में जो जाकर परिवर्तन होता है जैसे अर्थी मार्ग और ध्रुव मार्ग की बात आपको बताया आपको विस्तार जैसे उनका स्थान भी आपको बता दिया गीता की सत्यदेव विवेचन जो गीता है यहाँ गीता जो जोधपुर में छठी है उसकी आठ में जहाँ था चौबीस और पच्चीस का शुरू जो हमेशा दूसरा भूम हो जाएगा ऊपर की गति का और ये बीच की गति भी बतलाई और अधोगति की बात भी आपको बतलाई अधोगति की पक्ष की आदि योजना की नरकी जो बात है वो नरक में तो महान पाती जाता है उसके लिए जो आपने गौ प्राण आदि के मन जो गति मानी हुई है वो गति वहाँ देख रहे हैं आपको गौ प्राण के मन आपको मालूम हो रहता है। इस प्रकार से तीन प्रकार की गति होती है उनके पांच भेद हैं और इस प्रकार से जाता है तो कर्मों के अनुसार जाता है ये कहा भी ठीक है और गुणों के अनुसार इसकी गति होती है ये कहा भी ठीक है अंतकाल की समृद्धि के अनुसार इसकी गति होती है ये कहना भी ठीक है।
नारायण 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 ஆனந்தீரானம் ஆனந்தீரானம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.